हम लोग चाहते हैं कि ज़मीन के बंटवारे की समस्या ग्रामीण इलाके में सबसे महत्वपूर्ण है, और ज़मीन की बंटवारे की दिशा में न केंद्र सरकार ने न कांग्रेस की राज्य सरकारों ने कोई ठोस कदम अभी तक उठाए।
ये आवाज है उस शख्स की जिसे संसद में कागज का पुलंदा लिए घुसते देखकर सत्ता पक्ष की फूंक सरक जाया करती थी कि न जाने आज किसकी शामत आने वाली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मधुलिमय की। बहुत से लोगों को उनसे सख्त चिढ़ भी थी। उनको लगता था कि 1979 में उनका बना बनाया खेल मधुलिमय की वजह से बिगड़ गया। समाजवादियों को डर रहता था कि पता नहीं वो कुर्सी दौड़ में जीतने के लिए उनकी वक्ती तिकड़मबाजियों पर क्या कुछ कहें। तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थ के समय ही सुनाई देने वाली अंतरात्मा की आवाज के दौर में मधुलिमय लोकतंत्र, आडंबरहीनता और साफ सार्वजनिक जीवन के पहरेदार बन गए थे। मशहूर समाजवादी चिंतक और मधुलिमय को नजदीक से जानने वाले रघु ठाकुर बताते हैं।
वो एक आजीवन योद्धा रहे। एक आदमी जो मात्र 14-15 साल की उम्र में आजादी के आंदोलन में जेल चला गया और जब 44 में विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद छूटे, जब गोवा की मुक्ति का सत्याग्रह चला तो उसमें वो जेल गए, 12 साल की वो सजा हुई। और सजा के अलावा जब वो गिरफ्तार हुए थे और लाठियां जली थी तो बम्बे के अखबारों में ये समाचार छप गया था कि मधुलिमय गेले मधुलिमय का निधन हो गया, और उनकी पत्नी चंपा जी के पास में लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आ गए। एक अपने वाणी और कर्म के में जरा भी कोई भेदना करने वाले व्यक्ति वो थे। सांसदों को पेंशन नहीं मिलना चाहिए, ये उनकी राय थी, तो उन्होंने सांसद की पेंशन नहीं ली और अपनी पत्नी को भी कहा कि इस पेंशन का पैसा मेरी मृत्युवादी मत लेना, वो नहीं लिया। उन्होंने ये महसूस किया कि जब 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल का 16 साल बढ़ा दिया और संसद का 7 साल बढ़ा दिया तो उनका महसूस करना था कि संसद का टाइम 5 साल का था, 5 साल चुने गए थे, हमको इस्तीफा देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने दूसरों का इंतजार नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दिया। हमको याद है कि जब वो जीवित थे और चंपा जी कभी कभी बम्बई से आती थी तो वो चंपा जी के साथ में उनको सहयोग करने के लिए खाना बनाते थे। चूंकि पत्नी उनको मना करती नहीं, आप बनाइए, तो उनसे कहते थे वो कि चंपा भाई कड़ी में बहुत बढ़िया बनाता हूँ या अमुक सब्जी में बहुत बढ़िया बनाता हूँ, तो ये कह के वो उनमें सहयोग करते थे। मतलब उनमें नर नारी के समानता का जो भाव था वो एक प्रकार का आदर्श भाव था।
मधुलिमय ने दुनिया को बताया कि संसद में बहस कैसे की जाती है। वो प्रश्नकाल और जीरो आवर के अनन्य स्वामी हुआ करते थे। जब भी जीरो आवर होता सारा सदन सांस रोक कर एकटक देखता था कि मधुलिमय अपने पिटारे से कौन सा ऐसा नाग निकालेंगे और किस पर छोड़ देंगे। मशहूर पत्रकार और एक जमाने में मधुलिमय के नजदीकी रहे डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक याद करते हैं।
मधुलिमय बड़े गजब के इंसान थे। मतलब ये कि जब संसद के हॉल में प्रवेश करते थे तो कई बार मैंने देखा प्रधानमंत्री जी और मंत्री लोग वो सब अपनी कुर्सी में से हिलने लगते थे और सावधान हो जाते थे कि मधुलिमय आ रहे हैं। और उस समय डॉक्टर लोहिया के मुश्किल से 7-8 सांसद थे, तो जैसे ही मधुलिमय, किशन पटनायक, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मणिराम बागड़ी, ये लोग जैसे ही आते थे एक हलचल सी मच जाती थी संसद में कि जैसे कोई तूफान आने वाला है। और उसमें सबसे ज़्यादा लोग, सत्तारूढ़ लोग, मधुलिमय जी से डरते थे कि मधु जी आ गए। तो मधु जी को मैं मजाक में कहा करता था कि मधु जी, नाम है आपका मधुलिमय लेकिन आप बड़े कटुलिमय हैं।
अब बात की जाए मधुलिमय के मानवीय पक्ष की। शतरंज का खेल उन्हें बहुत पसंद था। वो और उनके बेटे अनिरुद्ध बड़े चाव से इस खेल को खेलते थे। मैंने अनिरुद्ध लिमय से पूछा कि एक पिता के रूप में मधुलिमय कैसे थे।
बहुत ही अफेक्शनेट और लिबरल फादर थे। कभी कोई चीज उन्होंने जबरदस्ती नहीं की। सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर छोटे बच्चे के साथ उनकी बहुत पड़ती थी और बच्चों को उनका बचपन रखते हुए भी उनको संज्ञान एडल्ट की तरह ट्रीट करते थे। तो हर कोई बात का एक लॉजिकल डिस्कशन, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, इस तरह से बहुत ही अफेक्शनेट पेरेंट थे। बचपन की मुझे याद है कि उन्होंने मुझे नहलाया तक है जब माँ घर पे नहीं रहती थी, मैं बहुत छोटा था।
मधुलिमय की रुचियों का रेंज बहुत विस्तृत था। महाभारत पर तो उनका अधिकार सा था। संस्कृत भाषा और भारतीय बोलियों के वो जानकार थे। संगीत और नृत्य की बारीकियों को भी वो बखूबी समझते थे। जानी मानी नृत्यांगना सोनल मानसिंह उनकी नजदीकी दोस्त थी।
Those days I don't think the politicians were so nearest and so unartistic, sorry to say that. Simple. He used to wash his own clothes, Sakhadi. And his wife Champaji was a professor of Sanskrit in Bombay University. She used to tease him. Madhu, teri girlfriend aayi hai. I found in him a wonderful friend, and I used to confide in him even my personal emotions. He had a very big voice, like we used to call him ships in mid-ocean. They have a fog horn, which, because there's thick fog. He had a very heavy voice. He was a great scholar and a very keen, open ear. I remember modern school, Shankarlal Hall, the last jugalbandi between Pandit Ravi Shankar and Ustad Ali Akbar Khan with Ala Rakhab on tabla. It was chaka-chak full. Madhujit and another friend, and we were all on the Gaddi Takya Masnad. And as I started playing, Madhuji whispers to me, Sitar to mili nahi hai. Jankari, oh, that ear, that keen, sharp ear. So that also extends, when you are so sharp in your perceptions.
सोनल मानसिंह एक और मार्मिक किस्सा सुनाती हैं। उन दिनों वो अपना घर बनवा रही थी। एक दिन जब वो उनके घर से चलने लगी तो मधुलिमय ने एक लिफाफा उनके हाथ में रख दिया और कहा कि इसे घर पर जाकर खोलना। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें 5001 रुपए थे।
He just sort of said के ये तुम्हारे लिए रखा है। मैंने कहा क्या है मधु जी, घर जाके देख लेना। मैंने घर जाके देखा and I was so moved. I called him. He says, अरे मेरे किताब की रॉयल्टीज का है, हाँ मेरी तरफ से इसमें डालो। How beautiful.
डॉक्टर वैदिक बताते हैं कि उन्होंने मधुलिमय को कभी फिजूल खर्ची करते नहीं देखा। उनके साथ घर की खिचड़ी और नॉर्थ एवेन्यू की कैंटीन का 2-2.5 रुपए वाला खाना उन्होंने कई बार खाया।
उनकी और मेरी प्रवृत्ति एक जैसी, कभी इलेबोरेट लंबा चौड़ा खाना नहीं बनता था। मुझसे कहते वैदिक क्या बनवाए तुम्हारे लिए, मैंने कहा मधु जी वही जो आप खाते हैं, वो खिचड़ी खाते थे हम दोनों, खिचड़ी और दही, यही हमारा लंच होता था हमेशा। उनके पास जो भी अतिरिक्त समय होता था वो संसद की लाइब्रेरी में बैठ के बिताते थे, और कई बार ऐसा होता था कि वो और मैं दोनों कभी कुमार गंधर्व जी का संगीत सुनने जाते थे, कभी भीमसेन जोशी को सुनने जाते थे, कई बार मधु जी चंपा जी मेरे घर आ जाते थे, और मेरे पास कुमार गंधर्व जी हमारे दोस्त थे, वो देवास के रहने वाले थे, मैं इंदौर का रहने वाला, तो उनके कई कैसेट्स मेरे पास दुर्लभ थे, तो वो मधु जी सुना करते थे। एक बार की बात मुझे याद है, कुमार गंधर्व जी यहाँ गंधर्व महाविद्यालय में ठहरे थे, गांधी पीस फाउंडेशन के सामने जो है, तो मधु जी को मैं ले गया, हम दोनों वहाँ सुनते रहे। तो कुमार जी ने पूछा कि वैदिक तुमको तो अच्छा लगता ही है, मधु जी को कैसा लगा? तो मालूम मधु जी ने एक वाक्य कहा, वो आज तक मुझे याद है, बोले हमको त्रिलोक के दर्शन होता है।
मधुलिमय की सादगी का आलम यह था कि घर में न फ्रिज था, न एसी और न ही कूलर, कार भी नहीं थी उनके पास, हमेशा ऑटो या बस से चला करते थे।
एसी कभी उन्होंने लगाए नहीं, और बल्कि जब वो बाद में अस्वस्थ हुए, उनको हृदय के रोग की समस्या आई, तो हम लोग ने काफी जिद की कि तब आपके यहाँ एक एसी लगा देते हैं, और उन्होंने हम लोग के लिए एसी नहीं लगाने दिया। उनके घर में वो फ्रिज भी नहीं रखते थे, और ऑटो से भी चलते थे, कभी कभी स्कूटर पे भी बैठ के जाते थे। और कितनी नैतिकता उनमें थी, इसकी एक घटना आपको मैं बताऊं कि जब ये 5 साल का समय उनका संसद का खत्म हुआ है, जब जिनकी चर्चा हमने आपसे की कि आपातकाल में से गांधी ने बढ़ाया था, तो जिस दिन उनका 5 साल का आखिरी दिन था, उन्होंने जेल से ही चंपा जी को पत्र लिखा कि ये मेरे आखिरी दिन है संसद का, इसके पूरे होने के पहले आप जाके दिल्ली का हमारा मकान खाली कर। और चंपा जी का भी कितना उनके प्रति निष्ठा थी, ये अकल्पनीय है कि चंपा जी बंबई से चल के वहाँ दिल्ली पहुंची, दिल्ली में जाके उन्होंने घर के कमरे का सामान निकाल के बाहर सड़क पर खड़ी हुई। उनको ये पता नहीं हम लेकर जाए कहाँ, सामान लेकर एक महिला सड़क पर खड़ी हुई है। एक पत्रकार मित्र थे जो पहले हम लोग के समाजवादी आंदोलन के साथ रहे थे, वो अपने स्कूटर से वहां निकले, उन्होंने देखा कि चंपा ताई खड़े हुए, तो उन्होंने चंपा जी से पूछा कि चंपा ताई कैसे खड़ी हुई। उन्होंने कहा कि हम आए थे, मंजू जी का आखिरी दिन था, उन्होंने कहा था खाली कर दो, खाली कर दिया। तो कहाँ जाएंगे, बोले पता नहीं कहाँ जाना है, तो वो अपने घर ले गए।
बहुत ही पारदर्शी व्यक्तित्व था उनका, ईमानदारी उनमें इस हद तक भरी हुई थी जिसकी आज के युग में कल्पना भी नहीं की जा सकती।
एक बार क्या हुआ, नॉर्थ एवेन्यू वाले मकान में मैं शायद रात को वहीं सोया, तो थोड़ी देर में मैंने देखा कि एक डाकिया आया, उसने घंटी बजाई, मैं बाहर निकला तो उसने कहा कि 1,000 रुपये का मनी ऑर्डर। साहब उस जमाने में 67-66 के दिनों में 1,000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती थी, फेलोशिप हम लोगों को 150 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये फेलोशिप मिलती थी, प्रोफेसरों की तनख्वाह 300 रुपये महीना होती थी। मैंने ले लिए और साइन कर दिया, मैंने खास देखा भी नहीं किसने भेजे हैं, क्या भी मधु जी के नाम से हैं तो ठीक है। तो मधु जी जब लौट के आए दोपहर के बाद शाम को, तो मैंने वो 1000 रुपये और वो मनी ऑर्डर के उसमें से कागज में से जो फाड़ के चिट होती है वो दे दी उन। मेरी तरफ देखने लगे घूर घूर के कि जैसे मैंने कोई गलती कर दी। मधु जी मुझसे कहने लगे ये तुमने क्यों लिए। मैंने कहा मधु जी मुझे क्या मालूम, मनी ऑर्डर आया किसने भेजा क्यों भेजा, मैंने कहा कोई आपका दोस्त होगा कोई रिश्तेदार होगा, मैंने ले लिए। बोले नहीं वैदिक तुम समझते नहीं हो, तुम बच्चे हो अभी, ये मालूम किसके पैसे हैं, ये उस चावल वाले के पैसे हैं जिसके खिलाफ मैं पिछले 1 हफ्ते से संसद में बोल रहा हूँ और मैंने मनु भाई शाह की खाट खड़ी कर रखी है। मनु भाई शाह उस समय मंत्री थे और मेरे ख्याल से वो ये कॉमर्स के मिनिस्टर थे और वो चावल कुछ आयात किया गया था या निर्यात किया गया था, उस पर बड़ी बहस चल रही थी संसद में। तो बोले ये पैसे नहीं है, ये रिश्वत है, रिश्वत, इसको फेंको, इसको वापस करो। उसी दिन या उसके दूसरे दिन सुबह मैं पोस्ट ऑफिस गया, मैंने वो पैसे वहाँ वापस किए, मैंने कहा कि ये वापस लीजिए। मधुली में जी बहुत नाराज।
1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्हें मंत्री पद की पेशकश हुई जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया और अपने स्थान पर एक और समाजवादी नेता पुरुषोत्तम कौशिक को मंत्री बनवाया।
जब जनता पार्टी बनी थी तो उनका नाम अध्यक्ष पद के लिए तय हुआ था और उनके अध्यक्ष पद के नाम का ऐलान भी होने का तय हुआ था, रात को संसदीय बोर्ड में तय हुआ था। हम लोग का जो जनता पार्टी का पहला सम्मेलन हुआ था प्रगति मैदान में, उसमें उस समय अध्यक्ष प्रधानमंत्री राजीव भाई थे, उनको सुबह ऐलान करना था। पर जब वो सुबह ऐलान करने के लिए मंच पर खड़े हुए उसी समय उनके लिए कुछ लोगों ने रोका और उन लोगों ने कहा कि और रुक जाइए और उनको फिर किसी प्रकार का प्रयास करके उनको अध्यक्ष नहीं बनने दिया गया। इसके बाद में फिर उनसे कहा कि आप विदेश मंत्री बन जाइए, तो उन्होंने विदेश मंत्री बनने से इनकार किया कि हमको नहीं बनना है। फिर उनसे कहा आप तब से किसी को नामजद कर दिए, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ के जो हम लोग के समाजवादी नेता अभी जीवित हैं पुरुषोत्तम कौशिक अपने स्थान पर उनको मंत्री बनाया।
1979 में उन्होंने जनता पार्टी में दोहरी सदस्यता का मुद्दा जोर शोर से उठाया जिसकी वजह से जनता पार्टी में विभाजन हुआ और मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई।
देखिए मैं तो ऐसा मानता हूँ अगर मधुली में अध्यक्ष हो जाते हैं जनता पार्टी के तो जनता पार्टी कभी टूटती नहीं, इसका चरित्र बदल जाता है। मधुली में टूटने चाहते थे परंतु मधुली में वैचारिक राजनीति की स्पष्टता भी चाहते थे, मधुली में राजनीति के धार्मिक इस्तेमाल के पक्ष में नहीं थे और इसलिए ये उनके ऊपर जो आरोप लगाया जाता है ये आरोप नितांत गलत है। उन्होंने दोहरी सत्ता का सवाल उठाया। जब जनता पार्टी बन रही थी उस समय प्रश्न आया था सामने कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और जनता पार्टी में जो शामिल होने वाले जनसंघ के लोग हैं इनके रिश्ते क्या होंगे। तो उस बैठक में ये तो दस्तावेज है कि संघ के लोगों ने कहा था कि भाई संघ तो एक अलग प्रकार की संस्था है, ये जनसंघ जो है राष्ट्रीय संस्था है और ये लोग इसमें काम कर रहे हैं, इनका संबंध हमसे नहीं है, ये हमारे साथ संबंध नहीं रखेंगे। परंतु जब जनता पार्टी में वो लोग शामिल हो गए और उनको कुछ अच्छी संख्या में सीट्स मिल गई, लोकसभा में आ गए, मंत्री बन गए, तो फिर उन्होंने धीरे धीरे उस पूरे निर्णय को अपने आप निरस्त करके बदलाव करने का प्रयास किया। पार्टी बनाना कुछ लोगों की लाचारी थी और पार्टी तोड़ना लोगों का षड्यंत्र था और षड्यंत्र का दोष मधु जी के ऊपर लगा दिया गया। मधुली में का इस तोड़ने से कोई संबंध नहीं था, मधुली में तोड़ने के पवित्र व्यक्ति नहीं थे, एकमात्र मधुली में कोई इस पे आक्षेपित किया गया क्योंकि मधुली में की प्रतिभा से, मधुली में के सिद्धांत से, मधुली में के चरित्र से, बेबाकी से बहुत सारी व्यवस्था के लोगों के मन में भय था, उसे उन लोगों ने षड्यंत्र करके मधुलियों को बदनाम करने का प्रयास किया।
रेहान फजल, BBC, दिल्ली।